الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. कल हमने एक दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना आलम व अस्तग़फिरुका लिमा आलम। और मैंने आपको बताया था कि इस दुआ के ऊपर हम फिर बात करेंगे। इस दुआ में किस चीज़ से अल्लाह ताला की पनाह मांगी गई है, वो बहुत बड़ी एक बला है और वो है शिर्क। शिर्क वो गुनाह है कि जिससे इंसान सोचता है कि तो क्या हो गया, अगर कोई शिर्क भी कर रहा है लेकिन इतने और नेक अमल कर रहा है तो क्या फ़र्क पड़ गया। हालांकि शिर्क वो गुनाह है जिसके साथ जितनी मर्जी आप नेक अमल कर लें, चाहे हज है, चाहे आप ज़कात है, सदक़ात हैं, इंसानियत की खिदमत है, यानी बड़े बड़े नाम जिनको आप बड़े ज़बरदस्त नेकी के काम समझते हैं, वो सब ज़ाया हो जाते हैं। इसी वजह से शिर्क ऐसा गुनाह है जिससे हम सब को अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें इससे बचा के रखें। अब हमारे जैसे लोग ना समझते हैं कि हम कहाँ शिर्क करते हैं, हमारा तो शिर्क कोई है ही नहीं, हम तो मुसलमान हैं, हमें इस दुआ की क्या ज़रूरत है। देखिए, शिर्क के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया कि ये चींटी की चाल से भी ज़्यादा जो है ना, ये छुपा हुआ होता है, ये ऐसे इंसान के अंदर क्रीप इन करता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि मैं शिर्क कर रही हूँ। और एक शिर्क जिसको आप शिर्क के असरार कह सकते हैं या छुपा हुआ शिर्क कह सकते हैं, वो रियाकारी भी है, ये भी एक शिर्क है। क्योंकि इंसान जब रियाकारी करता है, यानी दिखावा करता है अपनी दीन में, अपनी नेकी में, तो वो दरअसल किसी और को शरीक कर रहा है। ये नेकी अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए थी मगर वो किसी और को दिखाने के लिए कर रहा, या अल्लाह के लिए भी कर रहा मगर साथ साथ उसका ये भी मंशा है कि कोई और भी देख ले और फिर कोई और भी जान ले कि देखो मैं कितने अच्छे काम कर रही हूं। ये भी शिर्क की एक किस्म है जो हम मुसलमानों के अंदर बहुत कॉमन है। शिर्क की बहुत सारी इकसाम है, हम आज इसके ऊपर खास तौर पे इसलिए बात कर रहे हैं कि जब हम नेकी करने लगते हैं ना, तो अब शैतान इसको कैसे जाया करवाए, तो वो फिर रियाकारी करवा देता है और सारी की कराई नेकी जाया हो जाती है। कयामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, जाओ जिसके लिए तुमने की है उसी से जाके इसका अजर लो, तुमने उसके लिए की थी तो वो ही तुम्हें इसका अजर दे, मेरे पास तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं। अब देखिए, इंसान कितनी मेहनत से इन नेकियों को जमा करता है और सोच रहा होता है मैंने तो बड़ा बड़ा एक पहाड़ जमा कर लिया नेकियों का, मैं तो बड़े नफल पढ़ती हूँ, मैं तो बड़ी तहज्जुदें पढ़ती हूँ, मैं तो इतनी लोगों की खिदमत करती हूँ, तो मेरा तो कुछ बन ही जाएगा। लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो रियाकारी करके अपना सब कुछ ज़ाया कर चुका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से एक दफ़ा फरमाया कि जुबुल हज़्न से पनाह मांगो। जुब कहते हैं कुएं को, तो हज़न गम। तो वो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह जुबुल हज़न क्या है? फरमाया, जहन्नुम में एक गड़ा है यानी कुआं है जिससे रोजाना 400 दफा खुद जहन्नुम पनाह मांगती है। सहाबा ने पूछा, इस गड़े में कौन दाखिल होगा? फरमाया, वो इबादत गुजार जो अपनी आमाल का दिखावा करता है वो उसमें दाखिल होगा। अब देखें वो है कौन, इबादत गुजार। ये नहीं कहा गया फासिक, फाजिर, झूठा, कातिल, नामुना, मुनाफिक, वो नहीं, इबादत गुजार। अब दुनिया में इबादत गुजार तो बहुत खुश होता है कि मैंने कितनी इबादत कर ली है, मगर आखिरत में उसके लिए फिर क्या। और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने अमल को मशहूर करे अल्लाह ताला उसको अपनी मखलूक की मजलिसों में बुराई से मशहूर करेगा और उसको जलील व ख्वार करेगा। अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये जो होती है ना, ये असल में वो जैसे हमने पहले बात की थी उस बीमारी की, दुनिया की मोहब्बत, तो उसमें से एक है कि इंसान जब बहुत दुनिया चाहता है, दुनिया में सिर्फ पैसा नहीं मुराद होता, उसमें शोहरत भी, लोग बस मुझे कुछ समझ लें, लोग मुझे कुछ जाने, ये सब इसमें आ जाता है। तो इसमें ना सिर्फ ये कि इंसान सवाब से तो महरूम होता ही होता है, सवाब तो मिलना ही नहीं, उल्टा अजाब है, तो कुछ भी ना मिला, उल्टा नुकसान हो गया। इसी वजह से आप देखते हैं कि हमारे असलाफ ना इतना यानी डरते थे इस चीज से ना, कुछ शोहरतों से, इस बात से इतना डरते थे, गुमनाम रहना चाहते थे। इब्ने मसूद से मरवी है कि आप अपने घर से निकले तो कुछ लोग आपके पीछे पीछे चलने शुरू, तो आपने उनकी तरफ मुतवज्जो के फरमाया, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, खुदा की कसम जो मैं अपने घर के अंदर करता हूँ अगर तुम्हें पता चल जाए तो मेरे पीछे दो आदमी भी ना आए। ठीक है ना, अब वो इसको भी पसंद नहीं करते थे कि लोग हमें बड़ा नेक समझे और बहुत बड़ी चीज समझे। अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जब चार आदमी से ज्यादा बैठ जाते थे तो वो मजलिस से ही उठ जाते थे, यानी वो नापसंद करते थे इस चीज को। एक आदमी ने बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, मुझे कुछ वसीयत करें। फरमाया, अपने आप को गुमनाम कर दो, चाहे अच्छा खाओ लेकिन खुद को गुमनाम करो। फरमाया, आदमी आखरत की लज्जत नहीं पा सकता जो दुनिया में शोहरत का तालिब हो। अगर आखरत चाहिए ना तो दुनिया में ही शोहरत की तलब ना करें, सारे मुझे अच्छा समझें, मेरी तारीफें करें, कैसी है, अच्छी है, देखो ये कितना जबरदस्त काम करती है, देखो ये कितनी जबरदस्त इसकी ये नेकी है। इसी तरह अबू अमामा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे नजदीक सबसे ज्यादा काबिले रश्क वो मोमिन है जो गरीब हो, नमाज खुद खूब पढ़ता हो, अपने रब की इबादत अच्छी तरह करता हो, मगर पोशीदगी के साथ छुपा के इताअत करता हो, लोगों में गुमनाम हो, लोग उंगलियों से उसकी तरफ इशारे ना करते हो, वो देखो वो जा रहा है, वो है बड़ा नेक आदमी। अल्लाह अकबर। तो हमारी हालात क्या हैं, हम तो छोटी सी भी नेकी कर लेते हैं ना तो उसके बाद हमें ये होता है कि बस अब इसकी कहीं ना कहीं किसी को तो पता चलना चाहिए, तो ये ना हो कि ये चीज़ हमें डबो दे। इसलिए बहुत ज़रूरी है जो मैंने आपको ये दुआ बताई है, लम्मनी औज़ुबिका नुशरी का बिका वाना आलम, मैं जिसको जानती हूँ अल्लाह ताला उससे भी मैं तेरी पनाह मांगती हूँ, वो अस्तग़फिरु का लिमाल आलम। कई दफा इंसान बेध्यानी में भी ये काम कर रहा होता है, बेख्याली में कर रहा होता है, उसको नहीं पता चलता मैं शिर्क करने लगी हूँ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका रिस्क महज गुजारे का हो फिर वो उस पर सब्र करे, फिर हाथ से जमीन को रेतने लगे, और फरमाया उसकी मौत जल्दी हो जाए, उसके रोने वाले थोड़े हों और उसकी मीरास थोड़ी हो। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला हमें इस शिर्क से महफूज रखे, एक तो पहले ही हमारे पास कुछ नहीं है, खाली हाथ है, ऊपर से ऐसा ना हो कि ऐसा कोई काम हो जाए जिससे ये भी जाया हो जाए। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। आजकल हमें बहुत ज्यादा दुआ करनी चाहिए उन तमाम लोगों के लिए जो कि कोविड की बीमारी में मुब्तला है या जो इस बीमारी से दुनिया से जा चुके हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ख़ास तौर पे इंडिया से, कि कोई ना कोई किसी के घर में किसी की मौत हो गई या कोई लोग बीमार हैं इस बीमारी से। एक स्टूडेंट का पता चला वालदा इंतकाल कर गई हैं, खुद वो बीमार हैं और भाई भी सख्त बुखार में, और कोई उनको देखने वाला भी नहीं। तो इसी किस्म की और भी बातें बहुत सारी हैं, तो सबसे पहले तो ये कि जो दुनिया से इस बीमारी से चला गया, तो उलमा कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो ये बीमारी नहीं थी ना, लेकिन ताऊन की बीमारी थी, जो भी एक वबा थी। तो ताऊन की बीमारी वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शहादत का मरतबा है उसका। तो इसी हदीस से उलमा कहते हैं कि उनके लिए बशारत है जिनके मरने वाले इस बीमारी में गए, क्योंकि ये भी एक ऐसी ही बीमारी है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो दुनिया से चले गए उनको शहादत का मर्तबा अता फरमाए, और जो सेहत से महरूम हो गए अल्लाह ताला उनकी सेहत को वापस बहाल कर दे। मगर इसके अंदर हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, और वो ये है कि हम इस सेहत की कदर करें और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा कर सकते हैं करें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल अफरअयतुम इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम खतम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाह युतीकुम बिह। अगर तुम्हारे से अल्लाह तुम्हारी समात ले ले, तुम्हारी बसारत ले ले, तुम्हारे दिलों पे मुहर लगा दे, कौन अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए ये ला सकता है? तो आप समात और बसारत की जगह सेहत लिख लें अगर, कि अगर अल्लाह मेरी सेहत मुझसे ले ले तो वो कौन है जो मेरी सेहत मुझे वापस दिला दे? अक्सर जब नेमत पास होती है ना तो उसका ख्याल भी नहीं रहता। हाँ, जब छीनती है तो इंसान फिर बड़ा उस नेमत को याद कर करके रोता है कि हाय मेरे पास तो ये सेहत की नेमत है। लिहाजा इस नेमत पर अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज हो जाए कि अल्लाह शुक्र है हम और हमारे घर वाले आफियत में हैं। छोटी मोटी बीमारियां सभी लिए फिरते हैं, मगर अगर आप मोहताज नहीं है, अगर आप खा पी रहे हैं, अपने काम खुद कर रहे हैं, शुक्र अदा कीजिए। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम शुक्र अदा करोगे ना मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। तो जो चाहता है ना कि उसकी नियमतों में इजाफा हो, उसकी नियमत उससे छीने नहीं, उसको चाहिए कि वो शुक्र में इजाफा करते। शुक्र में आप इजाफा करें, अल्लाह आपकी नियमतों में इजाफा कर देगा। अल्लाह ताला को बंदे से शुक्र बहुत पसंद है, और उतने ही इंसान बखील होते हैं शुक्र अदा करने से। जुबान पर हमेशा शुक्र की जगह शिकवे ही रहते हैं। किसी ने सही कहा कि अल्लाह की नेमतें खा करके दांत गिर गए मगर जुबान फिर भी शिकायत से बाज नहीं आई। वाकई ऐसा है, जबकि अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान शुक्रगुजारी करे, उसका दिल शुक्र से भरा हो। और शुक्रगुजारी सिर्फ जुबान से नहीं होती, पहले दिल में होती है। दिल में ये एहसास हो बहुत स्ट्रांगली कि अल्लाह मैं इस काबिल नहीं थी, ये सिर्फ बात नहीं है जुबान से कहने की, वाकई दिल में ये हो कि मैं इस काबिल नहीं थी तूने जो मुझे अता कर दी। अब ऐसा बंदा कभी तकब्बुर कर सकता है जिसको ये हो कि अल्लाह मैं तो इस काबिल ही नहीं थी तूने मुझे जो दे दी है? तो सबसे पहले तो इसमें तकब्बुर की नफी है। शुक्र जो है ना तकब्बुर के उलट है। वो इंसान शुक्र कर ही नहीं सकता जिसमें तकब्बुर है, उसको तो लगता है सब कुछ मेरी अपनी काबिलियत से मुझे मिला। तो शुक्र के अंदर ये जज्बा दिल में होना चाहिए कि अल्लाह तू ना देता ना तो मेरे पास कुछ नहीं, ये सारा कुछ तेरा ही करम है, सर से पैर तक मैं तेरी दी हुई नेमतों में डूबी। इस एहसास के साथ जब आप जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं, शुक्र के कलिमात कहती हैं, तो वो है वो बात जो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़े फिर मकाम रखती है। फिर उन्हीं चीज ऐसे ही कलिमात से फिर मीजान भर जाता है। मगर ऐसे नहीं कि बस तस्बीहां तो कर रहे हैं और दिल में कोई ख्याल नहीं है, दिल में कोई ये शुक्रगुजारी का एहसास नहीं है। तो दिल में ये होना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला की मोहताज हूं और उसने ये सब देकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। ऐसा ना हो कि मैंने तो आज तक कोई खुशी देखी ही नहीं, मुझे तो कुछ कुछ मिला ही नहीं, मुझे तो कोई सुख ही नहीं मिला, हम तो बड़े बदनसीब हैं। ये ना शुक्र इंसान के कलिमात हो सकते हैं, ये अल्लाह ताला की नजरों से इंसान को गिरा देते हैं कि मैंने इतना कुछ तुझे दिया हुआ जो कुछ नजर ही नहीं आता। हाँ, वो चीजें नजर आती हैं जो नहीं मिली, ये ना शुक्री है। तो ना शुक्री से हम बचें, ना शुक्री के कलिमात बोलने से बचें, ना शुक्री के एहसास दिल में रखने से बचें। ठीक है, तो शुक्रगुजारी करनी है, शुक्रगुजारी और इस नेमत पे बहुत ज्यादा शुक्रगुजारी करें कि कहाँ लाखों लोग इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं और लाखों दुनिया से चले गए और अल्लाह तूने मुझे नेमत दी हुई है ये सेहत की, और मैं ठीक ठाक बैठी हुई हूँ और मैं दुनिया में चल फिर रही हूँ, जमीन के ऊपर हूँ, जमीन के नीचे नहीं हूँ। ठीक है, अल्लाह अकबर। आज जिस बीमारी पे हम बात करने जा रहे हैं, वो भी बीमारी ना असल में तकब्बुर से ही जन्म लेती है। मैंने आपको क्या बताया था कि तकब्बुर से बड़ी सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। लेकिन ना अब किसी को मिसाल के तौर पे डायबिटीज हो जाती है तो उसके साथ कितनी बीमारियां आ जाती हैं, इसको कोई और, तो इसी तरह कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनसे आगे बीमारियां और जन्म लेती। और ये बीमारी है ऐब जुनून, लोगों के ऐब चुनना। ये भी कहां से शुरू हुई? दिल से शुरू हुई। दिल में तकब्बुर था तो अब बस लोगों के ऐब ही नजर आते हैं। ये भी एक निशानी होती है, अगर देखना है ना कि मेरे अंदर तकब्बुर है या नहीं। वैसे तो हम बहुत आजिज बनते हैं कि मेरे अंदर कहाँ तकब्बुर है जी, मैं तो बड़ी मिस्की, लेकिन हमेशा लोगों के ऐब ही नजर आते हैं। इसका मतलब दिल में तकब्बुर छुपा हुआ है, उनकी कभी भी कोई अच्छाई नजर नहीं आती। जब ऐब नजर आते हैं तो क्या लगता है फिर बताएं? वो हकीर नजर आते हैं, छोटे नजर आते हैं, और इंसान को अपना आप फिर बड़ा लगने लगता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के बुरा होने के लिए यही काफी है कि वो मुसलमान भाई को हकीर जाने। यानी अगर किसी में कोई और बुराई नहीं भी है ना, सिर्फ इतनी बुराई काफी है कि वो दूसरे को हकीर जानता है। इसको हम बुराई समझते ही नहीं, फलां ऐसा, फलां वो, फलां क्या, ये कितनी बड़ी बुराई है। और फिर हम अब क्या अपने आप को कहते, नहीं मैं तो बड़ी नेक हूं। अब ये चाहे मुंह से हम नहीं बोले लेकिन हमारे एहसास ऐसे होते हैं। तो जब दूसरे को की बुराइयां को चुनने वाले बन जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बुराई है, क्योंकि इससे आप दूसरे को हकीर समझ, मामूली समझने लगते हैं। इसकी क्या वैल्यू है, ये तो ये ऐसा है। और फिर या तो उसकी गइबत करते हैं, जब फलाने फलाने को मैंने देखा वो तो ऐसा ऐसा है, या उसके मुंह पे बात दे मारते हैं, तुम तो ऐसे, तुम तो ऐसे। आपको पता है कि अगर किसी ने तौबा कर ली हो ना किसी गुनाह पर, और उसको कोई उस गुनाह का दाना दे कि पता है तुम्हारा, तुम तो ये होती थी, तो जो कि हम बाज तो नहीं आते ना ये बातें करने से। जाहिर है जब किसी के ऐब देखे हुए हैं तो उसके बाद हम उनको भूलते थोड़े ही हैं, अपने ऐबों को तो हम चाहते हैं कि अल्लाह भुला दे, अल्लाह बस हमारे ऐब, हमारे जो गुनाह हैं बस हमारे अमालनामे से भी हटा दे, अल्लाह फरिश्तों को भी भुला दे, अल्लाह इस जमीन को भी भुला दे, लेकिन दूसरों के ऐब हम कहाँ भूलते। तो जब हम उसको ताना देते हैं तो फिर हमें हदीस से पता चलता है कि ऐसा शख्स खुद भी नहीं मरेगा जब तक वो उसी गुनाह में अल्लाह उसको ना डाल जिसका वो दूसरे को ताना देगा। तो फिर ताने भी इंसान देता है, तो गइबत भी करता है, दूसरे को हकीर भी समझता है, फिर दूसरे के बाज दफा मजाक भी उड़ाता है, फिर उसके बारे में बदगोइयां भी करता है, बुरी बातें भी कहता है। कितनी सारी चीजें इस एक चीज से निकली ना, उसके बुरे नाम भी लेता है, उसका मजाक भी उड़ाता है ना। तो ये सब कहाँ से शुरू हुआ? जब उसकी ऐब नजर आने लगे कि उसकी खूबियां बिल्कुल पीछे चली जाए। जाहिर है कुछ इंसान में खूबियां भी तो होंगी लेकिन खूबियां नजर नहीं आती। और तो और हम तो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ते, चोरों को नहीं छोड़ते, उनके भी ऐप हमेशा उनको बताते रहते हैं, आप तो ऐसे, आप तो ऐसे, वो तो ऐसे। हालांकि हम खुद कौन से परफेक्ट हैं, हम खुद कौन से ऐबों से खाली हैं। बाज मर्द अपनी बीवियों को बस यही करते रहते हैं, तुम तो ये, तुम तो वो। अस्तग़फिरुल्लाह, सिवाय अल्लाह की जात में के और कौन है कि जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई कमजोरी ना हो। किसी में ज्यादा होंगी, किसी में कम होंगी, मगर होंगी सब में, क्योंकि सब हम इंसान ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम नजर में होता है, जो किसी के ऐब देखने की आदी हो जाती है और खूबियां उसको नजर नहीं आती। जब ऐब चुनते रहे फिर इंसान इसकी हैबिट डिवेलप कर लेता है, फिर ये एक आदत बन जाती है, फिर इंसान गंदी मक्खी की तरह हो जाता है। देखा आपने, मक्खियां किधर बैठती, कूड़े करकट के ढेरों पे, गंदगियों पे। तो ये इंसान भी फिर मक्खी बन गया ना, गंदी मक्खी। वो लोगों की बुराइयों को और उनकी जो गुनाह है या उनकी जो कमजोरियां हैं उनको बस नोट करता रहता है, क्या कर रहा है, क्या सी है। गंदी मक्खी बनना किसी को पसंद है? जब इंसान ये काम करेगा, लोगों के ऐप टटोले टटोलेगा, तो उसका जौक भी यही हो जाएगा। किसी के घर गए तो नोट कर रहे हैं आप, क्या मैं बुराई देखूं कि फिर मैं जाके घर बताऊं कि ये देखो ये तो ऐसे है। किसी कोई कोई बात कर रहा है तो उसमें से भी, जैसे आप ट्वीजर से बाल खींचते हैं ना, उस बात के अंदर से भी ऐसी बात निकालना कि जो कोई बुराई की हो। देखा इसने ऐसे कहा था ना, और वो बेचारा डर रहा होता है कि ये मेरे घर आया तो अब कोई मेरा ऐब ना देख ले, मेरा कहीं इश्तिहार ना बना ले, अब इससे मिल लिया तो ये ना हो कि अब मेरी खैर नहीं। मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। कहाँ जुबानों से महफूज है अगर लोगों के ऐब ही टटोलते रहे, तलाश कर करके निकालते हैं। और आजकल तो घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, सोशल मीडिया ही इतना काफी है, उसके ऊपर से ही देख देख के लोगों के ऐप चुनते रहते हैं। इसमें क्या ऐब है, इसमें क्या बुराई है, उसमें क्या बुराई है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो होना तो ये चाहिए कि किसी के घर में जाएं तो अंधे बन के बैठे वहां पे, ये जो कोई चीज नोट ही नहीं कर, और निकले वहां से तो गूंगे बन के निकले, तो कोई बात ही ना किसी को कहे। जब हम कहीं जाते हैं और नोट करते हैं चीजों को और इस तलाश में रहते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि अगर अल्लाह ताला हमारे इस तरह से ऐब तलाश करने लगे ना, तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। हमारे अपने अंदर कितनी कमियां हैं ये इंसान सोचे ना, तो दूसरों के ऐबों को भूल जाए। ये काम वो ही इंसान कर सकता है जो अपने ऐबों से गाफिल है, जिसको अपनी नहीं परवाह कि मैं कितनी कमियों का शिकार हूं, उसको दूसरों की परवाह है। आप मुझे बताएंगे एक बार, जितने आपने आज तक पढ़ा है सुना है, कब्र में ये सवाल होना है हमसे कि फलां के क्या गुनाह करती थी, फलां में क्या बुराइयां थी, फलां में क्या कमजोरियां थी, फलां के ऐब क्या थे, या हशर के दिन हमें खड़ा करके ये पूछा जाए, फलां फलां का बताओ, आप अपनी हमसाई का बताओ, दोस्त का बताओ, खानदान वालों का बताओ, फलां कैसी थी, फलां वैसी थी, फलां के अंदर क्या क्या बुराइयां होती थी ये बताएं, या हमें हमारे गुनाहों का पूछा जाए, हमारी कमियों का पूछा जाए। तो देखिए कुराने पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया सबको वो सूरा आती है, वैलुल्लि कुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा, वैल है, वैल जहन्नुम की एक वादी है जिसे जहन्नुम भी पनाह मांगती है। वो वैल किसके लिए है? हुमाजा और लुमाजा के लिए। हुमाजा और लुमाजा के बारे में आता है कि ये वो है जो ऐब चुनते हैं, ऐब टटोलने वाला, उसको हुमाजा कहते हैं। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। तो जिंदगी का ये असूल बना लें कि लोगों के ऐबों के पीछे नहीं पड़ना, वरना हदीस में जैसे क्या आता है, जो ऐसा करेगा अल्लाह उसको उसके घर में रुसवा कर देगा। देखिए ना, अगर अल्लाह हमारे ऐबों के पीछे पड़ जाए, हम तो कोई कुछ भी, कोई इज्जत हमारी ना रह जाए। तो इसलिए लोगों के ऐबों को छोड़ दें और उनको रियायत दिया करें, सोचा करें कि मेरे अंदर भी तो कितने ऐब हैं, मेरे अंदर भी तो कितनी कमियां, उससे ज्यादा ही होंगी। साथ ही अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह मुझे मेरी कमियां दिखा दे और उन पर तौबा और इसलाह करने की तौफीक दे दे, क्योंकि ऐसे बंदे को नहीं अपनी कमियां नजर आती, अपनी नजर आती होती तो वो उनमें ना लग जाता। और एंड में मैं एक बस सवाल करूंगी, सिर्फ एक सवाल हम सबके लिए, इस पे आज सोचिएगा, जितनी बुराइयों की हम बात कर रहे हैं, क्या यही तरीका होता है जाने वाले का। बताइए, जाने वाले का क्या यही तरीका होता है? जाने वाला कौन? हम तो सब रहने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, जब ये जहन में होता है ना कि हम तो रहने ही वाले, तो फिर ये काम हम सब करते हैं, है कि नहीं? जब ये दिल में आ जाता है ना कि मैं जाने वाली, तो फिर ये सारी कमियां, ये सारे ऐब निकल जाते हैं, खुद ब खुद निकल जाते हैं। आप देखिए, किसी ने ट्रेवल करना हो ना, सोचती सी मिसाल है, कोई एक मुल्क से दूसरे पे ही जाना, तो जो मुसाफिर के आखिर के दिन होते हैं वो कैसे रहता है? कोई आया, किसी ने कुछ मांगा, अच्छा चलो दे दो, अब तो मैं जा ही रही। किसी ने कोई बात कह दी, अच्छा चलो छोड़ो मैं तो अब जा ही रही। किसी से मिलने का नहीं दिल चाह रहा था, चलो अब उससे भी मिल लेती हूँ, कोई बात नहीं, अब तो मैं जा ही रही। इतनी चीजों को हम इग्नोर कर देते ना, सिर्फ कि इसलिए कि अब तो मैं जा रही हूँ। सबसे इतने नाइस हो जाते हैं हम, इतने अच्छे अखलाक वाले हो जाते हैं, क्योंकि अब पता है कि अब मैंने 2 दिन में तो चले ही जाना। तो हमारी जिंदगियां भी क्या ऐसी हैं, ओवरऑल देखें, सिर्फ इसके अंदर नहीं है, ऐप टूटने वाली बात नहीं, सारी बातों के अंदर देखें, क्या जाने वाले इसी तरह रहा करते हैं जैसे हम रह रहे हैं? याद सोचने के लिए आपके लिए सवाल छोड़ती हूँ। आज की जो दुआ है ना, ये भी इसी चीज के लिए है जो मैंने आपको बताई है आज, कि हमें नियमतों का एहसास करना। और मैं बहुत हमेशा डरती हूँ कि अल्लाह, चूंकि तूने ही दी है ना नियमत, तेरी मर्जी है, तू जब मर्जी वापस ले ले। तो ये किसी के पास नियमत ना हो ना, वो तो ठीक है, वो फिर वो, मसलन कोई झोंपड़ी में रहता है उसने घर देखा ही नहीं, कोई साइकिल ही चलाता है वो गाड़ी में कभी बैठा ही क्या, किसी के पास कोई नियमत नहीं है तो वो उसने देखी ही नहीं। मगर जो नियमतों को चख लेते हैं ना एक दफा, उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है अगर उनसे नियमत छिन जाए। तो हमेशा डरते रहना चाहिए, और ये ही दुआ है आज की जो हम करेंगे। दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिक, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगती हूँ नियमतों के ज़वाल से, कि जो तूने मुझे दी है ना नियमतें, अल्लाह मुझसे छीन ना जाए, अल्लाह मुझसे वापिस ना ले लेना। व तहव्वुली आफियत, और अल्लाह जो तूने आफियत में मुझे रखा हुआ ना, ये बदल ना जाए, या आफियत की जगह मुसीबत आ जाए, आफियत की जगह मसले मसाइल आ जाए। आफियत मैंने आपको बताया था कि कितनी दुआओं के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहम तरीन दुआ इसको फरमाया, आफियत की दुआ, कि आफियत की दुआ मांगा करें, कि आपने यानी हुक्म दिया है, आफियत है तो सब कुछ है। वह फुजाअति, और अल्लाह अचानक आ जाने वाली सजा से मैं तेरी पनाह मांगती हूँ, अचानक कोई पकड़ आ जाए, अचानक कोई सजा आ जाए। वह जनी ईसा होते, और अल्लाह तेरी हर किसान की नाराजगी से, अल्लाह नाराज ना हो, बाकी जग नाराज हो तो होता रहे, रब नाराज ना हो। तो वो नाराज हो गया, उसने मुंह फेर लिया, तुम्हारा तो बेड़ा गर्क ही हो गया, ठीक है? तो उसको नाराज नहीं करना, चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े, लोगों को नाराज करना पड़े, लोगों को छोड़ना पड़े, किसी से टकराना पड़े, लेकिन अल्लाह को नाराज नहीं करना। तो अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगते से कि तू मुझसे नाराज हो जाए। तो बहुत ही प्यारी दुआ है, और हम सब नियमतों में जो रहने वाले, अब कोई ये ना कहे मुझे कौन सी कोई नियमत मिली है, नहीं, हम सब जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बैठे हुए सांस ले रहे हैं ना, हम नेमतों में ही है, ठीक है? तो हम सब इस दुआ को लाजिम पकड़े। और जो आज का जिक्र है, मैंने आपको पहले भी जिक्र बताया था, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, तो वो भी एक जिक्र था ना, वो तो आपने 100 टाइम्स कहना, 100 दफा कहेंगे तो हदीस में आता है इतने गुना चाहे समुंदर की झाग के बराबर भी हो ना तो भी माफ हो जाते हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दी 100 दफा कहने से। तो इसी से मिलता जुलता आज जिक्र है, जिसको एक दफा कहेंगे ना जन्नत में एक दरख्त लग जाएगा, सुभान अल्लाह अल अजीम व बिहम्दी, सुभान अल्लाह अल अजीम व बिहम्दी, सुभान अल्लाह अल अजीम व बिहम्दी। ठीक है, तो ये जिक्र भी आप नोट कर लीजिए। अब अपनी नमाजों को चार चांद लगाने के लिए क्या करें, वितरों से सलाम फेर के 3 दफा पढ़ना है, सुभान अल मलिक अल कुद्दूस, सुभान अल मलिक अल कुद्दूस, सुभान अल मलिक अल कुद्दूस, ये 3 दफा पढ़ना है वितरों से सलाम फेर के। ओके, ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।